તારીખ 11/9/1994 શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકના ચોથા અધિકાર ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 73, મૂળ કેસેટમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે.
તો ક્યાં કારણે समझ तो समझ कर्म उल्टी विपरीत श्रद्धा के कारण से यह ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान यानी फेक ज्ञान हो जाता है। दूसरी बात है और एक बात कहते हैं कि ज्ञानी को भी प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत दोनों तत्व को जानने का उदार ज्ञान है, परंतु विचार के भाव के कारण से प्रयोजन भूत को जानने पर उसका लक्ष्य जाता है, इसलिए दुष्प्रिय होता है। ज्ञानी कदाचित जब बाल धारणा करे मैंने जानकारी कर ले फिर भी अंतर्मुख दृष्टि करता नहीं, अंतर्मुख हो सकता नहीं, इसलिए अप्रयोजन भूत होता है उसको ही वह जानता है, प्रयोजन भूत को जानता नहीं है। ऐसे दो तीन बातें तो परमात्म के साथ है तो गुरुदेव ने कही है, तो उसका सारांश वो है कि हमें हमारे पेड़ पौधे अच्छी तरह ध्यान नहीं जाएगा तो हमारे कोई भी परिणाम की शक्ति लगने वाली
नहीं है।
एक वर्ग के होते नहीं, सब एक क्लास के नहीं होते, हमारे में हम लोग जो बहने सभी की योग्यता अलग अलग है, कोई एक क्लास के नहीं बहने, तो हर एक को वो चाहिए कि मेरी योग्यता में मुझे बात कौन सी बात प्रयोग करे। स्वाध्याय करते हैं छात्र पढ़ते हैं तो मेरे काम की मेरी अवस्था में मेरे काम की बात पहुंच जाएगी, अगर उस बात पर हमारा लक्ष्य नहीं है, उस तरफ हमारा दृष्टिकोण नहीं है, तीक्ष्ण और सूक्ष्म दृष्टिकोण होना चाहिए तो हमें कोई लाभ होने वाला निवेशा को समय रखा जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे हर व्यवहार किस कारण से करते हैं, अपने आत्मकल्याण की रुचि के कारण से करते हैं। जिसको अपना आत्मकल्याण करना है जल्दी से जल्दी कभी अभी, उस कारण से ऐसे प्रयोजन दृष्टिकोण आ जाता है, तो उसको जिसका आत्मकल्याण करने की जिसको लगन नहीं है रुचि नहीं है तो पढ़ जाता है, बहुत सालों तक पढ़ता रहता है, कुछ बैठक की बातें जानकारी हो जाती है लेकिन सरकारी सत्ता नए धर्म की प्राप्ति शिक्षा की प्राप्ति उसको नहीं होती है। हाँ अगली बात है अभी ही हमें हमारा कार्य कराना है, जिसको कल करना है आज नहीं करना है अभी नहीं करना है उसको कभी नहीं करना है, क्या जिसको अभी नहीं करना है उसको कभी नहीं करना है, वो भी मैं नहीं चलेगा। तो दृष्टि प्रकाश में पूज्य सोगानी जी कहते हैं कि मोक्ष कभी ऐसा बाधा भी पकड़ता है कि मैं पहला सुन लू तो सही, फिर पढ़ लू तो सही, फिर विचार तो करो, फिर बात के पीछे पीछे मैं प्रयुक्त होगा। तो कहते हैं तो ये पीछे वाले का हमेशा हमेशा पीछे ही रहेगा, वो तो कभी आगे आएगा ही नहीं और उसका जो नियत है वो तो ठीक नहीं है। संसार में तो कोई पैसे कर्ज करके भी या माल लेकर भी चुकाता नहीं है तो वो क्या करता है, बाद में रहूंगा फिर दूंगा बाद में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी तब जाऊंगा, कब फिर वो नहीं बोल सकता, ये नहीं बोल सकता, इसका मतलब वो एक उसका देने का नियत नहीं है, उसका जो देने का जवाब है वो मीठा है वो कड़वा नहीं है। फिर जो जानकार है वो समझ लेते हैं कि नियत ठीक ये हुक्म ही देने वाला नहीं। वैसे हम कल करेंगे, पहले पढ़ ले, पहले समझ ले, पहले सुन ले, बाद में हम हमारा कार्य का भीतर में प्रारंभ करेंगे, उसका नाम तो नहीं होता। पहले ये काम करना है वो बात ही गलत है, सुनते ही चोट लगनी चाहिए। बाबा कहते हैं सुनते ही चोट लगनी चाहिए, पर जो बात सुनी समझी तत्काल उसका अमलीकरण चालू हो जाना चाहिए, जब काम होने वाला है। तो इसका अमलीकरण नहीं होता है तो काम भी नहीं होगा। रुचि का दृष्टांत है तो देते थे, देते थे वो दृष्टांत। आपको रुचि कैसी होनी चाहिए कि जैसे दीपक की के प्रति पतंगा की रुचि होती है, वैसे वो पतंगा को देखता है तो सोचने में नहीं समझ में आता, तुम्हें इसके प्रति जल्दी से जाओ, नहीं जाओ, आज जाओ, कल जाओ, विचार करके जाओ, कभी का कोई विचार नहीं करता। जपक लगा करके अपने पूरा आत्मसमर्पण कर देता है, क्या जपक लगा के पूरे के पूरे अपने आत्मअर्पण का आत्मसमर्पण कर देता है, कुछ देर नहीं। ऐसी तीव्र रुचि हमारे आत्मकल्याण के प्रति अगर होती है तो ये कार्य का प्रारंभ सही रूप में होता है, वरना जो भी करते हैं सभी बेकार ही बेकार जाने वाला है। हमारा परिश्रम, हमारा समय सभी व्यर्थ हो जाए। तो कुछ परवाह नहीं करता, उनको दीपक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पतंगा को दीपक चाहिए। वैसे जिसको आत्मकल्याण करना है उसको आत्मकल्याण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यही सही पात्रता का स्वरूप है, वरना पात्रता ही नहीं है तो धर्म रहेगा कहाँ। धर्म तो एक बहुत बड़ी ऊंची चीज है, जैसे हमारे पैसे जेवर हीरे आदि को रखने के लिए घर में तिजोरी चाहिए, ऐसे तो नहीं रखे जाते। वैसे धर्म के रहने के लिए पहले पात्रता चाहिए, ऐसे बिना पात्रता धर्म उत्पन्न ही नहीं होता, रहेगा तो कहां से। पात्रता वाले को ऐसा है वो सही, किंतु किंतु परंतु लगाता है, उसका नियत ठीक नहीं है। तो बात है बातों के लिए करना ही है तो ईमानदारी से कर ले। हमारे आत्मकल्याण में अगर हमारे ईमानदारी नहीं, हमारे प्रमाणिकता नहीं, तो फिर हमारे प्रमाणिकता का भरोसा ही कोई भी कार्य में करने लायक नहीं होता। कन्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अशोक मंदिर के प्रश्न पे चौथा पारिवार हमारा स्वाध्याय करेगा यहाँ पे। इस सुख दुख का जो प्रयोजन है उसका चर्चा कर रहे हैं, उसमें कहते हैं कि प्रकाश का कारण तो कर्म बंधन है, दुख का कारण कौन है, कर्म बंधन है, यानी बंधन से संसार में जीव परवश है, स्वस्थ नहीं है, जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकता, इसलिए अपने चाह से अनुकूल नहीं होता, वो तो दुख होता ही होता है। और इस कर्म बंधन का कारण मिथ्यात्मा आदि का आश्रय है, नृत्यों के शास्त्र पद्धति से बात कर रहे हैं, तो उसके बंधन का क्या है, बंधन का कारण आश्रय है। कौन से आश्रय है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या सिद्धांत, ये इसका आश्रय कारण है। यदि दंड भाव को और आश्रय भाव को इन दो न पहचाने, इनको माने कि दंड भाव को या आश्रय भाव को, दंड तत्व को या आश्रय तत्व को न पहचाने, इसका भाव वासन न हो, हमारे परिणाम में, हमारे भावों में हम पर पदार्थ में प्रतिबद्ध होते हैं, दुखते हैं, ऐसे भाव दंड को नहीं समझे तो कैसे क्यों आते हैं, इसके विचार द्वारा कारण आश्रय को नहीं समझे तो मूल में क्या बात है, क्यों अगर उत्पन्न होते हैं, किंतु दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करे। क्या कहते हैं कि जीव को अपने परिणाम में भाव रोग हुआ है, अपने परिणाम में अनेक प्रकार के विभाव और विकार के जो परिणाम होते हैं वो भाव रोग है। तो इस भाव रोग का फल क्या है कि भाव रोग होता है, अनेक प्रकार के भाव को कारण बनता है। आज मनुष्य रोग है तो कहां जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है, किसी की पहुंच नहीं आती, किसी का एड्रेस का पता नहीं चलता कि कहां चला गया। इसे चौथ ब्रह्मांड में भटकता हुआ जी, तुमको ये रोग क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका मूल निदान नहीं हो पाता है तो उसका इलाज न करेगा। कोई भी रोग होता है जिसका रूट कॉज अगर निदान ही नहीं होता है तो इसका सही इलाज कभी होने वाला नहीं है। तो इनका अभाव मूल नहीं जाने तो इनका अभाव कैसे करे, और इनका अभाव नहीं करे तो कर्मबंधन कैसे नहीं हो। जब आश्रय का अभाव नहीं हो, विचारवादी का ज्ञान का अभाव नहीं हो तो कर्मबंध कैसे मिटेगा। इसलिए दुख ही होता है, संसार में सभी जीवों को दुख ही होता है। कोई भी कितना भी अनुकूल संयोग वाला हो लेकिन भय का दुख किसको नहीं होता है। मृत्यु का भय, अकस्मात का भय, रोग आ जाने का भय, लूट का भय, चोरी का भय, अनेक प्रकार के भय के छप्पर के नीचे ही कांपता हुआ जीवन चलता है, तो ये दुख में जीवन है। किसी भी प्रकार का भय नहीं है कि इस मार्ग का सबसे प्रारंभ में आने वाला फल है क्या। अज्ञान मिटने से सही ज्ञान जब होता है तो सबसे पहले क्या फायदा हो जाता है कि किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है, संसार के एक भी प्रसंग का भय, पर जिसको मृत्यु का भय नहीं सबसे बड़ा तो वो है, उसको इसके नीचे वाले भय तो होंगे आएंगे ही आगे। ये भय सबसे पहला चल जाता है, यानी तो ऐसा कहते हैं कि इसके शब्दकोश में भय नाम का शब्द है वो कैंसर हो जाता है, भय नहीं रहता है। भय जैसी चीज को जानते ही नहीं तो भय क्या चीज होती है, ऐसी निर्भयता निर्भीकता इस मार्ग में ज्ञान होते ही प्रारंभ में इंस्टेंट एकदम शुरू में आ जाती है, ये सबसे बड़ा फायदा है। हाँ, मुख्य का भी मुख क्या देगी कि निर्भयपना और निर्भरता आने लगता है, कुछ कुछ अंश में आने को लगता है। जब समय ज्ञान सानुभव होता है तो फिर अपना अव्यवाद निर्वाद शासक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव करता है तो भय तो आने का ही कहां से आने का कोई गुंजाइश नहीं रहता। लगभग तो वो भी क्या दशा आने वाला है उसको आने की तैयारी हो चुकी है, तो उनका ये फायदा तो यानी होते पहले ही पूरे या किसी को ज्यादा किसी व्यक्ति जितने विकास हो सकते योग्यता जिसकी वर्तमान हुई होती है है। जैसे किसी को बॉडीगार्ड होता है तो हम टीवी में देखते हैं हमारे बड़े बड़े जो नेता है तो कैसे थोड़ा भाषण दे रहे हैं किंतु उनको पता है कि मेरे आगे पीछे पूरी सिक्योरिटी नहीं होती, तो वो अपने विषय को कॉन्सेंट्रेट होकर के अपना भाषण दे सकता है। ऐसे ज्ञानी के आश्रय में आने वाले मुमुक्षु जी भी पूरे पूरे सेफगार्ड हो गए हैं, ऐसा उनको लग रहा है, ऐसा वो अपने आप को महसूस करता है कि मैं भी सही सलामत लेकर आ गया हूँ, मुझे कोई भी भय होने की चिंता। उसके बिना आश्रय होगा था अगर पहचाना नहीं गया तो आश्रय होने का सवाल पैदा नहीं होता। हमें ज्ञानी को के आश्रय में रहने की जरूरत लगेगी तब हमको कोई भी चीज प्राप्त करनी है तो पहले उसकी जरूरत लगती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत है तो नई खोज को जन्म देती है, तो ये तो नई खोज करनी है, करनी ही है। अनंत ज्ञानियों ने खोज करके रखी हुई चीज हमारे सामने आ रही है, इतनी सुविधा इस्तेमाल करो। जब पे जो वैज्ञानिक होते हैं साइंटिस्ट होते हैं उनको तो जो उपलब्ध नहीं है उसको रिसर्च करना पड़ता है, बहुत अनजाने क्षेत्र में वो कार्य करता है, उसका कार्य क्षेत्र ऐसा होता है कि कोई चीज उपलब्ध नहीं है उसकी उपलब्धि नहीं करता है, तो उतनी मुसीबत उतनी दिक्कत इस मार्ग में नहीं। इस मार्ग में तो बहुत से ज्ञानी हुए तो उन्होंने ये सब बात हमारे जो समस्या है उसका समाधान के साथ साथ दिया है, फिर ये समस्या है तो ये तेरा समाधान है। स्कूल में पढ़ने जाते हैं कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो समस्या दी जाती है, उत्तर उसको नहीं देते हैं, उत्तर साथ साथ नहीं बताते हैं कि प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, सॉल्व भी फॉलो प्रॉब्लम ऐसे करके देंगे प्रश्न पत्र देते हैं उसमें क्या है सॉल्व भी फॉलो प्रॉब्लम उत्तर भी बताते हैं। यहाँ तो प्रॉब्लम भी हमारा अच्छी तरह वो बताते हैं, इतने हमारे प्रॉब्लम हम नहीं जानते उतना तो वो डिफाइन करके या उसका स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन दे करके हमारे प्रॉब्लम को उनको बताते हैं तो उसके समाधान सॉल्यूशन भी दे देते हैं, कितनी सुविधा है। तत्वाभ्यास करने में तो बहुत सुविधा है, तो ये उनकी करुणा है अनुग्रह है, तो अपने अनुभव को वहां रखते हुए ही अपने दुखी जीवों को सुखी करने में हमें बुलाते हैं। इसलिए अथवा निषात्वादिक भाव है सो दुखमय है, निषात्व रागादि परिणाम है स्वयं आकुलता रूप है, यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने जैसा है वैसा नहीं समझे नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे, क्या ये दुख रूप है उसको दुख रूप महसूस नहीं करे और भ्रांति से सुख रूप जानेंगे तो उसका अभाव भी नहीं होगा तो दुख ही रहे। इसलिए आश्रम को जानना इसलिए निजात्व ज्ञान आदि जो भी आश्रय है उनको भी जानना, जानना माने या पहचानना, जानना मैंने पहचानना तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। यदि उसे जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे तब उसके लिए से दुखी हो, इसलिए उसको भी जानना पहचानना। समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। जो भी कर्म से बंधा हुआ जीव है उनको बंधन में दुख ही दुख होता है, पराधीन होता है, पराधीनता उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है। आश्रम से वर्तमान में भी दुख है, आश्रम में अशुद्धि का आना, अशुद्धि का प्रवाहित रहना, संवर्ग में अशुद्धि का रुक जाना, उत्पन्न होना ही रुक जाना, अशुद्धि हो जाना। तो आश्रम से मैंने अशुद्धि से वर्तमान में ही दुख है और भविष्य में इसका दुख भी होता है। क्या सिद्धांत करता है कि आश्रय भाव है वो जीव के दोष भाव है, दोष दुख का कारण है, निर्दोष का दुख का कारण है। सीधी सारी बात है, दुख नहीं है। तो सभी जीव को दुख का कारण अपने दोषी भाव है और ज्ञानियों को सुख का कारण अपने निर्दोष का है, पवित्रता है, उतनी सी बात है। दोष के साथ दुख नियम रूप से जुड़ा हुआ है, जैसे एक सिक्का के दो बाजू होती है, अलग अलग नहीं होता, वैसे ही सुख गुण के साथ और निर्दोषता के साथ सुख जुड़ा हुआ है, निराकुश। इसलिए संवर को मैंने आत्मशुद्धि को भी जानना, आत्मशुद्धि के भाव कैसे होते हैं उनको भी पहचानना, जानना माने पहचानना। तथा प्रथमचित किंचित कर्मबंध का अभाव करना उसका नाम निद्रा है। कर्मबंध कर्म खिल जाते हैं, आत्मा में क्या होता है कि आत्मा में विशेष शुद्धि होती है, शुद्धि की वृद्धि हो जाती है, इसे तो निद्रा शास्त्र भाषा में इसको निद्रा कहने में आई है। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो। निद्रा का स्वरूप जानने में पहचानने में नहीं आएगा तो निद्रा करने की प्रवृत्ति भी चालू नहीं होगी। तो सर्व का मंदिर है, निद्रा नहीं तो अकेला बंद रहेगा, बहुत बंद हो जाएगा और बहुत बंद हो करके निगुण में जीव चला जाता है, जिससे दुख ही होता है। बंद अकेला बंद होता है, सर्व का बंद होता है तो दुख ही होता है, इसलिए निद्रा को भी जानना। ये सुख दुख का विषय चला रहे हैं, तात्विक दृष्टि से नौ तत्वों के माध्यम से सुख दुख का क्या क्या कारण है उसको इसका प्रतिपादन करते हैं। तथा सर्वथा सर्वकर्म मंद का अभाव होना उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष किसको कहते हैं? दूसरे मोक्ष की बात है। सभी पूर्व किए हुए कर्मों के बंधन उसका नाश हो जाए, एक भी कर्म शेष नहीं रहे, उसको निष्कर्म अवस्था रूप मोक्ष कहने में आया है। अनुग्रह दोष है। आत्मा के अवस्था में, आत्मा की अवस्था में परिपूर्ण शुद्धि हो जाना और उस शुद्धि से परिपूर्ण सुखमय दशा हो जाना, उसी का नाम बुद्ध से मुक्त होना, उसी का नाम भाव मोक्ष है। ये धर्म मोक्ष प्रबंधन का भाव को दिखाता है, भाव मोक्ष दुख की मुक्ति को कहते हैं, विभाव की मुक्ति को, दोष की मुक्ति को, दुख की मुक्ति को, जन्म मरण की मुक्ति को भावकोष कहने में आया है। उसे नहीं पहचाने दुनिया पहचान लिया है, मोक्ष के विषय में पहचान लिया है, क्योंकि पहला ही मोक्ष का पूर्ण शुद्धि का अधिकार होता है, तभी मोक्षता की वास्तविक शुरुआत सर्वकाल के लिए, आगामी पूरे भविष्य काल के लिए एक संरक्षण भी मुझे दुख न हो, ऐसा शुद्धि के कारण से होने वाला है सुख, उस सुख प्राप्ति का जो अभिप्राय है उसको मोक्ष का पूर्णता का अभिप्राय कहने में आया है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे, अगर इस विषय में पहचान नहीं आएगी तो उसका इलाज उपाय भी चालू नहीं होगा। ये उत्साह का उठने का कारण क्या है कि हमें पूरा पूरा सुख सदा के लिए चाहिए, पर ये सुख दोष से उत्पन्न वाला कृत्रिम आर्टिफिशियल सुख नहीं, लेकिन निर्दोषता से उत्पन्न होने वाला सहज आत्म स्वभाव में से उत्पन्न होने वाला गुण से उत्पन्न होने वाला सुख है, शांति में है। ऐसा हमें हमेशा के लिए पूरा सुख चाहिए, इस सांस से उत्साह चालू होता है, इस ताना से उत्साह चालू होता है, उसी के साथ उसके पहले कभी किसी का उत्साह चालू यथार्थ रूप से नहीं होता। तो संसार में कर्मबंध से उत्पन्न दुखों को ही सहे और परवश होकर के सहना पड़ता है, संसार के दुख सहन करने में कोई छुड़ा सकते नहीं, पीड़ा होती है, मृत्यु आती है, कुछ भी हो जाता है, होने के बाद तो पता चलता है बहुत खराब एक्सीडेंट हुआ है, 10 करोड़ का बार्गेन किया था, एक ही बार्गेन में 1 करोड़ का नुकसान हो रहा था, रात को 12 बजे से गाड़ी से बाहर निकला, दूसरे एक्सीडेंट हो गया, या तो इतना खत्म खतरनाक परिस्थिति हो गई इसमें बैठने वाला बच्चे नहीं सकता, डर गया, तब ये पीड़ा है, कौन चला रहा है, इस पीड़ा से कौन चला रहा है, हाथ पे हाथ पे पैर टूट गए, माथा में जब एक समूह उतने इतने ऑपरेशन बल्टी ऑपरेशन कितने बल्टी ऑपरेशन जवान 35 साल कुछ नहीं चलता, बंधन का कोई दुख से मुक्त करा दे ऐसी कुछ रूपी बंधन को सहना दुख ही दुख सहे, तब संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को भी सहे, इसलिए मोक्ष को भी जानना, मोक्ष को भी पहचानना, इस प्रकार दिवाली कार जानना क्या था कि अगर हमें सभी प्रकार के से मुक्त होना है। हमारे लिए टेंशन के कई प्रकार के लाभ प्रकार है, सब प्रकार के दुख निकालने का एकमात्र इलाज है मास्टर के जिसको कह रहे हैं। अलग अलग इसके लिए कुछ कार्य करने के लिए करना पड़ता है। अपने स्वरूप मूल स्वरूप का जो अज्ञान चलता है, यानी हमारा मिसकॉन्सेप्ट चलता है, मूल स्वरूप क्या है तो हम नहीं जानते हैं, तो हम हमारे प्रवृत्ति हमारे को अन्य कल्पना करके ही करते हैं, उसमें नए नए गुण को हम बोल लेते हैं। और इसलिए जीव को वास्तविक रूप से आत्मशांति चाहिए, उनको इनके लिए ये सब बात ज्ञानी में बहुत करना करके प्रतिपादन किया है। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही है ऐसी प्रतीति न आए तो जानने से क्या होगा, क्या गलत है उसके साथ में। तो शास्त्र पढ़ते हैं, बुद्धिमान है तो जान लेते हैं बात को, लेकिन विश्वास करते नहीं। अच्छी कंपनी का शेयर होता है तो उसमें विश्वास करके कैसे लगा देते हैं, हम सब डायरेक्ट को जानते नहीं, लेकिन कोई अच्छी ट्रिक दे देते हैं कि जिनेन्द्र भगवान की जो वचन है उस पर हमारा विश्वास करता है। जानते हैं विश्वास प्रतीति नहीं करते हैं तो जानना से क्या फायदा हुआ, कि जाना नहीं जाना उसमें कोई अंतर नहीं रहा। यानी जाना है हम भी जानते हैं कि नई गड़बड़ी चालू हो गई, विश्वास तो बुरा है जानते हैं इस बात को, लेकिन विश्वास नहीं किया तो ज्ञान का विकास अहम आई बिना रहेगा। तो जानने से क्या हो, प्रयोजन तो सिद्ध हुआ कि जब प्रकृति नहीं आई तो उसका सुख, उसका फल जो सुख है तो सुख भी नहीं आएगा, शांति भी नहीं मिलेगी, जाकर बेकार है। मैंने गाना, मैंने स्वाध्याय किया, कुछ किया, मैंने स्वाध्याय भी किया, पर आत्मकल्याण के मार्ग में कुछ न कुछ तो हमने कुछ किया ही है, ये संतुष्ट होता है विचार को तीव्र बना है, ये संतुष्ट कराने विचार को तीव्र बना है। हमने जाना है घंटे पर बैठे रहे, लेकिन विश्वास किया कि नहीं किया इस बात पर, प्रतीति आई मैंने विश्वास किया कि नहीं किया। जो जिनेन्द्र परमात्मा विश्वास किसके पर किया जाता है, विश्वास करने का आधार बिंदु कौन सा होता है, प्रमाणिकता निर्दोष का। तो जिनेन्द्र परमात्मा जो पूर्ण निर्दोष है, कैसे है हमारे परमात्मा जिसके लिए वचन है, तो परिपूर्ण निर्दोष है। अगर इनके वचन पर हमारी प्रकृति विश्वास नहीं है तो फिर हमको सुख शांति पाने का अधिकार भी नहीं है, तो कभी भी मेरा सुख शांति पाने का भी है। विश्वास जो है वो ज्ञान के परिवार को कहते हैं, कति को इसको श्रद्धा कहते हैं, तो श्रद्धा को लोग श्रद्धा के परिणाम को नहीं पहचानते हैं, उसको ज्ञान प्रधान श्रद्धा का कवि कहते हैं, विश्वास कति को लोग नहीं समझते हैं, लेकिन विश्वास को लालच है तो वो अकल करना चालू हो जाएगा। क्यों? तो भूख लगी है, भोजन भी थाली में आया है, तो कहने की जरूरत है कि वो खाने लग जाएगा। तो कहने की जरूरत है भूख और तृष्णा की तड़प तो सामने चीज आ ही नहीं जाए, तो फिर वो खाने के लिए खाएगा कि नहीं खाएगा, ये शंका तो इसके पर उठाई जा सकती है कि जिसको भूख लगी ना हो, तो ये शंका होती है वो शायद खाएगा शायद नहीं खाएगा, क्योंकि भूख लगी वो खाए बिना मिलेगी उसका अमलीकरण नहीं करेगा तो गाली के लिए तो करेगा, बहुत तेजी से करेगा, बहुत जल्दी से करेगा। ऐसे सहज अवस्था हो जाती है, कृत्रिमता से करनी पड़ती नहीं है। कुछ वैसे प्रार्थना करते कोई आत्मदाय व्यक्ति आया जानकारी होती है जाने परंतु ऐसी ही है, ऐसी प्रतीति नाई तो जानने से क्या हुआ, यानी जानना जानने का प्रयोजन कौन सा हेतु था, किस हेतु से जानकारी किया, शास्त्र क्यों पढ़ा, अगर प्रतीति नहीं आया तो उसने शास्त्र पढ़ने का भी रहेगा। इसलिए उनका सिद्धांत करना कार्यकारी है, प्रतीति को विश्वास को सरकार को विकासन करता है। ऐसे जीवादी तत्वों का सत्य सिद्धांत करने पर ही दुख होने का अभाव प्रयोजन की सिद्धि होती है, यानी सुख होने का सद्भाव प्रयोजन की सिद्धि होती है, नेगेटिव भाव होता है, दुख होने का अभाव दुख चल रहा है तो दुख जाता है तो सुख होता ही है, किसी को व्यवस्था होती नहीं है। इसलिए जीवादी पदार्थ है, जीव जीव आश्रम वन समूह निद्रा मोक्ष आदि प्रश्न योजना है, ये पदार्थ है, वे ही प्रयोजन भूत जानना, इसका भाव भाषण करना, सातों तत्वों का भावासन करना उसको पहचानना, तभी दुख का अभाव होगा वस्तु की प्राप्ति होगी। तो सात और नौ के जो बात है उसमें पाप नौ तत्व हो जाता है, बना सात तत्व है, हमारे व्यवसाय में इससे बहुत सी बातें झंझट में होती है, इससे तो कोई इतनी जल्दी बड़ी झंझट नहीं है, क्या सात बात को या नौ बात करें पहचानने का सुख की प्राप्ति के कारण से पहचानने का प्रयास करेंगे तो अवश्य उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, यहाँ पर फेलियर होने का चांस नहीं है। अगर हमें जरूरत लगी तो सफलता अवश्य मिलती ही है, ऐसा ज्ञानी और नए कौन